नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तो हम वृंदावन धाम में ही हैं और बलराम जी आज प्रकट हुए थे, तो हम बलराम जी को ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। तो रास्ता भी निकल जाएगा जब तक, ठीक है ना। सो बलराम जी जो है वो गुरु तत्व हैं। और गुरु तत्व क्यों हैं? क्योंकि बलराम जी जो है वो सेवा के प्रति रूप है, वो है ना। और हमारे शास्त्रों में बताया गया कि बलराम जी भगवान कृष्ण की 10 प्रकार से और 5 रसों में सेवा करते हैं। बलराम जी शांत भाव में भी सेवा करते हैं, दास्य में भी करते हैं, साख्य में भी करते हैं, वात्सल्य में भी करते हैं और माधुर्य रस में भी सेवा करते हैं बलराम जी। शांत भाव में जहाँ बलराम जी पूरा जो धाम है वो बलराम जी का विस्तार है, वो है ना। तो पूरा धाम और भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं, भगवान का चामर, भगवान का आसन, भगवान का बेड, भगवान की चप्पल, भगवान का जो छत्र, ये सब जो हैं ये बलराम जी के विस्तार हैं सारे, है ना। और जो मृदंग करताल है ये भी बलराम जी के विस्तार हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जो मृदंग करताल है बहुत संभाल के रखनी चाहिए, बड़ी आदर से उनको रखना चाहिए हमें, है ना। सो वृंदावन में क्या रूल क्या है वृंदावन में, कि आप किसी भी रस में स्थित हो उसमें सेवा का भाव शामिल है। चाहे शांत भाव में है तो भी सेवा का भाव शामिल है उसके अंदर, चाहे दास्य भाव में तो सेवा है ही सर्वोपरि। अगर आप साख्य रस में हो तो भी सेवा है, वात्सल्य में भी सेवा है और माधुर्य में भी सेवा है ना। और माधुर्य में सेवा की बात तो जो भगवान कृष्ण की जो पत्नी है वो आपस में बात कर रही हैं, भागवतम में बता रहे हैं और उसमें सब बता रही हैं कि चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, भगवान से उनका जो मुख्य भाव है वो सेवा का भाव है। अगर वो भगवान से लड़ती भी हैं तो भी भगवान को सुख प्रदान करने के लिए, सेवा के लिए भगवान से लड़ती हैं। जैसे सत्यभामा लड़ती है ना भगवान से, ये चाहिए वो चाहिए ला के दो, परिजात पुष्प ला के दो, नहीं भगवान कहते हैं ठीक है ला के देता हूँ, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। लेकिन और वहाँ पे हम देखें रुक्मिणी देवी हैं, वो कभी लड़ी नहीं भगवान से। भगवान कभी मजाक भी करते थे तो उनको घबराहट हो जाती थी रुक्मिणी देवी को, है ना। तो कोई भी भाव रहेगा, हर एक भाव में जो भी भगवान की जो पत्नी है वो भगवान की सेवा में ही लगी हुई है बेसिकली, है ना। गोपियाँ भगवान की सेवा में, अगर वो गोपियाँ भगवान से लड़ रही हैं, भगवान को छेड़ रही हैं, भगवान से गुस्सा कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उसके पीछे भगवान को सुख प्रदान करने का भाव निहित है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई इफ बट नहीं है कि हाँ भाई ये मतलब ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मान के चलना चाहिए कि भगवान की सेवा का भाव निहित है। इसी प्रकार बलराम जी जो भी कर रहे हैं, चाहे शांत भाव में है उसमें सेवा का भाव निहित है। पूरा वृंदावन धाम जो बलराम जी ने प्रकट किया है वो कृष्ण की सेवा के निमित्त है बेसिकली, है ना। दास्य भाव में हालांकि बलराम जी, हम सब जानते हैं कि बलराम जी दास्य भाव में उन्होंने मतलब बिल्कुल सेवा का सारा सीमाएं लांघ दी उन्होंने, लक्ष्मण जी के रूप में जब उन्होंने भगवान की सेवा की, है ना। तो जब भगवान राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा ओहो बहुत बुरा हो गया, चलो 14 साल बाद मिलते हैं, टाटा बाय बाय, है ना। उन्होंने कहा मैं आपके साथ जाऊंगा, बस बात ख़त्म हो गई, आपके बिना बात नहीं बनेगी, है ना। सो बलराम जी जो हैं वो भगवान के साथ हमेशा रहे और वनवास में भी भगवान के आगे चलते थे वो, और जितने भी जो खर पतवार है, कांटे वगैरह, झाड़ियाँ, वो सारी वो साफ़ करते थे ताकि भगवान राम और सीता माता को कोई भी परेशानी नहीं हो। और जब भगवान जब किसी भी जगह पे पहुँचते थे वो बोलते थे चलो यहाँ पे रुकते हैं आज, है ना। तो पूरी झोपड़ी वगैरह जो भी कुटिया बनाते थे और सारी साफ़ सफाई करते थे, तो ये सारा जो जिम्मा था वो लक्ष्मण जी ने अपने सिर पे लिया हुआ था, है ना। और जब भगवान रेस्ट करते थे भगवान राम, तो लक्ष्मी जी लक्ष्मण जो हैं वो चौकीदारी करते थे, गार्ड का काम करते थे वो। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी कभी उन्होंने सो के नहीं देखा उन्होंने, है ना। पूरा 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहे। आप लोग वहाँ क्यों देख रहे हैं यार,
24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहे
तो वहाँ पे क्या है मतलब। लेकिन इस दौरान में लक्ष्मण जी भगवान को कई बार बात वो बोलना चाहते थे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी छोटा भाई होने के नाते कभी भी उन्होंने बोला नहीं।
ज़्यादा कम है क्या है।
हम ये देखते हैं कि जब भगवान राम गए थे वो हिरण के पीछे, तो बोल के गए थे कि भैया तुम सीता की रक्षा करना, छोड़ के मत जाना। लेकिन अब सीता देवी ने उनको इतनी बातें सुनाई कि उनको छोड़ के जाना पड़ा उनको, है ना। तो और इस दौरान रावण ने हरण कर लिया, तो भगवान राम ने बोला कि सारी गलती तुम्हारी है, है ना। तो लक्ष्मण जी को बड़ा उसका दुख लगा उनको। और फिर जब भगवान राम ने सीता देवी का त्याग किया, तो पहले उन्होंने भरत को बुलाया था कि देखो जाओ तुम जाके छोड़ाओ। भरत जी ये सुनते ही बेहोश हो गए। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को बुलाया, शत्रुघ्न भी बेहोश हो गए ये बात सुन के। लेकिन लक्ष्मण जी जब उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला जाओ तुम ये काम करो, बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन लक्ष्मण जी ने मना नहीं किया काम को। उन्होंने बोला भैया वह भगवान राम का आदेश है तो मुझे करना ही है। इतनी डेडिकेशन थी उनकी, है ना, लक्ष्मण जी की। सो लक्ष्मण जी के रूप में उन्होंने सोचा यार छोटा भाई बनने में बड़ी दिक्कत आ रही है, अब आगे बड़ा भाई बन के आऊँगा। तो वो बलराम जी के रूप में उनके बड़े भाई के बड़े भाई में बड़े भाई के रूप में आए, है ना। और जन्म से ही भगवान की सेवा में लगे हुए थे, नहीं जैसे भगवान का जब आगमन होने वाला था तो उससे पहले वो देवकी माता के गर्भ में गए और उसको एकदम पूरा क्लीन कर दिया उसको, ताकि भगवान इसमें आके विराजमान होंगे गर्भ में। तो जाके पूरा साफ़ सफाई करके एकदम क्लीन कर दिया, भगवान के आने का रास्ता बनाया उन्होंने, है ना। उसके बाद जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान की अनेक प्रकार से सेवा करते थे, सुरक्षा करते थे भगवान की, है ना, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, कहीं मिट्टी तो नहीं खा रहे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कुछ ये तो नहीं कर रहे, वो तो नहीं कर रहे, पूरा ध्यान रखते थे भगवान कृष्ण का, है ना। उनका उनके सिर पे जो है यशोदा माता और नंद महाराज निश्चिंत रहते थे कि चलो बलराम है तो कृष्ण सुरक्षित है, बेसिकली ये पॉइंट था, है ना। सख्य भाव में भगवान के साथ पूरा खेल खेलते थे और लड़ाइयाँ आपस में पूरी प्रतिस्पर्धा होती थी, और बताया गया कि कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे से कुश्ती करते थे, पूरी भिड़ते थे, कभी कृष्ण बलराम के ऊपर तो कभी बलराम जी कृष्ण के ऊपर, है ना। पूरी लड़ाई करते थे, एकदम पूरी फाइट जिसे होती है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में, एक दूसरे को सजा भी देते थे ना। ये सजा के चक्कर में तो उन्होंने कई असुरों का वध किया उन्होंने, है ना। वत्सल्य भाव में भगवान कृष्ण के बड़े भाई का रोल तो निभा ही रहे थे वो, है ना। जब बलराम जी थक जाते थे तो भगवान कृष्ण उनके चरण सेवा किया करते थे, है ना। एक गोप को बिठा देते थे और बलराम जी उसके गोदी में सिर रखते थे और लेट जाते थे और भगवान कृष्ण बलराम जी के पैर दबाते थे, बलराम जी भी कृष्ण के पैर दबाते थे। तो वत्सल्य भाव में सेवा करते थे और माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करते थे वो अनंग मंजरी के रूप में, जो श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है, है ना। तो अनंग मंजरी के रूप में भगवान की माधुर्य भाव में सेवा करते थे, तो मतलब सेवा का कोई मौका नहीं छोड़े थे, है ना। भगवान के जितने भी ड्यूटीज हैं वो उनका काम यही है कि हर तरह से भगवान की सेवा करना, जैसे गोवर्धन है हरिदास वर्यो, हर तरह से भगवान उनके भक्तों की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार बलराम जी भी हर तरीके से कृष्ण की सेवा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते, है ना। लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और खुद भी सेवा में लगे रहते हैं और दूसरों को भी भगवान की सेवा में जोड़ते हैं, इसीलिए गुरु तत्व है, है ना। गुरु क्या करते हैं, गुरु खुद भी कृष्ण की सेवा में लगते हैं और दूसरे लोगों को भी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल है गुरु का, है ना। गुरु जो है खुद भी कृष्ण की सेवा में लगेगा और दूसरे भक्तों को भी भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करेगा वो, है ना। सो इसीलिए अगर हमने भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है तो हमें बलराम जी की शरण लेना एकदम कंपलसरी है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। अगर हम बलराम जी की शरण नहीं लेंगे तो हम कभी भी भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो बलराम जी की शरण लेने का मतलब क्या है, बलराम जी की शरण लेने का मतलब है गुरु की शरण लेना, है ना। हमें कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी हम एक गुरु की शरण लें और उनकी शिक्षाओं के आधार पर जीवन बिताएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो बकायदा हमें मंत्र में हरि नाम में दीक्षा प्रदान करें, तब हम भक्ति में, वो भक्ति की हमारी शुरुआत होगी तब, है ना। अगर हम गंभीरता से अगर हम गुरु की शरण नहीं लेते, गुरु की शरण लेने की तैयारी नहीं करते तो प्रॉब्लम है, है ना। तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब अगर हमें गुरु में निष्ठा नहीं है तो इसका मतलब है हमें बलराम जी में निष्ठा नहीं है। अगर बलराम जी में निष्ठा नहीं है, नित्यानंद प्रभु निष्ठा नहीं है, तो हम कभी भी भगवान कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु को कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। प्राप्त करने की बात दूर की है, है ना। हम कितना ही प्रयास कर लें, कितना ही हम जानकारी ले लें, कितनी ही हम सेवा कर लें, लेकिन जब तक गुरु की सेवा नहीं, गुरु की शरण नहीं लेंगे, जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लेंगे, गुरु के आदेश के अनुसार जीवन बिताने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम भगवान कृष्ण को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें कभी भी हमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, है ना। बलराम जी आदि गुरु हैं, है ना। बलराम जी भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ ये अच्छा डिवोटी है, इसको आप अपनी शरण में ले लो, इसको आप सेवा में लगाओ, है ना। जब तक बलराम जी या नित्यानंद प्रभु जब तक ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन बलराम जी जो है वो डायरेक्टली भगवान की माधुर्य भाव में सेवा में नहीं लगाते, वो और बहुत सारी सेवाओं में लगाते हैं लेकिन माधुर्य भाव में डायरेक्ट सेवा में नहीं लगाते, है ना। माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करने की जिम्मेदारी सेवा किसकी है, श्रीमती राधा रानी की है। तो अगर कोई भक्त भगवान की माधुर्य भाव में सेवा करना चाहता है तो भी बलराम जी की शरण लेनी पड़ेगी। तो बलराम जी श्रीमती राधा रानी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़, ये अच्छा डिवोटी है, इसको आप माधुर्य भाव में भगवान की सेवा में लगाओ। तो श्रीमती राधा रानी उनकी बात सुन के वो डिवोटी को भगवान की सेवा में लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति माधुर्य भाव में भगवान से आकर्षित है तो बलराम जी का महत्व नहीं है, बलराम जी का उतना ही महत्व है तब भी, है ना। श्रीमती राधा रानी जी हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी जी के पास भी बलराम जी की सिफारिश से ही हम पहुंच पाएंगे। अदरवाइज़ हम श्रीमती राधा रानी के को हम कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते, कभी भी उनकी शरण हम नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर माधुर्य भाव से भी कोई आकर्षित है तो भी उसको गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी उसको, है ना। क्लियर है ना ये बात। अगर हम बलराम जी की लीलाओं की बात करें तो उसमें से एक पर्टिकुलर लीला जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वो है प्रलंबासुर का वध भगवान ने जो किया। बहुत ही सुंदर लीला। और बलराम जी जो बेसिकली है, बलराम जी का जो अवतार है बेसिकली, वो बलराम जी अनर्थ को नष्ट करते हैं। जितने भी हमारे जीवन में, हमारे मन में जितने भी अनर्थ हैं, उन सब का सफाया जो है वो बलराम जी की कृपा से होगा, है ना। सो प्रलंबासुर की बात करें तो एक बार भगवान कृष्ण, बलराम जी और सारे ग्वाल बाल जो हैं वो गए वन में गायें चराने के लिए। तो वहाँ पे खेल रहे थे सारे वो, तो उन्होंने दो ग्रुप बना दिए। तो एक तरफ भगवान कृष्ण बन गए लीडर और एक तरफ बलराम जी लीडर बन गए उनके, है ना। लेकिन उस दिन एक बड़ी ख़ास बात हुई थी कि एक जो गोप है, एक ग्वाल नहीं आया था, वो छुट्टी कर गया था, उसको कुछ काम पड़ गया या जो भी है, वो उस दिन नहीं आ पाया था। तो प्रलंबासुर जो एक राक्षस था, असुर, कंस ने भेजा था, वो इस मौके की तलाश में था। उसने उस ग्वाल का जो है रूप बना लिया और टोली में शामिल हो गया। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ने, दोनों ने देख लिया कि हाँ यार, ये असुर आ गया हमारी टोली में, है ना। लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, है ना। उन्होंने कहा चलो देखते हैं क्या करेगा ये, है ना। तो जब उन्होंने आपस में खेलना शुरू किया तो जो ये प्रलंबासुर था, ये भगवान कृष्ण की टीम में शामिल हो गया, है ना। तो प्रलंबासुर ने सोचा कि अगर मैं ये बलराम का वध कर दूंगा तो कृष्णा इनके बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे, तो कृष्णा ही मर जाएंगे। कृष्णा को डायरेक्टली मारना बड़ा मुश्किल है, मैंने सुना है उन्होंने कई सारे असुरों का वध किया, तो बलराम को मार देता हूँ तो अपने आप कृष्णा विराय में अपने आप ही दुख से मर जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, कंस जो है निष्कंटक हो जाएगा, है ना। ये उसका बेसिकली प्लान था उसका। तो जब खेलना आपस में शुरू किया तो शर्त ये थी कि जो हारने वाली टीम है, जीतने वाली टीम के लोगों को अपनी पीठ पे बिठा के वो आगे तक लेके जाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जी वो पेड़ तक लेके जाएंगे जी। चलो प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, भगवान कृष्ण की टीम हार गई, है ना। कितनी अद्भुत बात है, सुप्रीम पर्सनैलिटी, हाँ, परम भगवान हार गए, तो उन्होंने लीला रची, है ना, लीला रची उन्होंने। सो हार गए तो अब कृष्ण ने एक गोप को अपने कंधे पे बिठाया, तो प्रलंबासुर ने जब बलराम जी के सवारी करने की बारी आई तो प्रलंबासुर फटाफट आके आ गया, मैं बिठाता हूँ। तो बलराम जी ने कहा फाइन ओके, आ जाओ पिट्ठू, बन जाओ पिट्ठू। तो पिट्ठू बन गया प्रलंबासुर, लेके सारे भागे। तो बाकी सारे तो रुक गए एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, प्रलंबासुर नहीं रुका, वो दौड़ता गया दौड़ता गया। बलराम जी ने कहा ये क्या चक्कर चल रहा है, रुक नहीं रहा है, पागल हो गया ये, नहीं। तो बलराम जी ने देख लिया कि यार ये असुर है, अब ये मतलब मैं थोड़ी देर और भी आगे चले जाऊंगा ना तो सब पीछे से जो कृष्ण है, ग्वाल बाल हैं, वो सबको वो सब परेशान होंगे कि यार क्या हो गया, कहाँ पे चले गए। तो ज़्यादा दूर जाना ठीक नहीं है। उन्होंने एक मुक्का मारा और उसका सफाया कर दिया।
बलराम जी और कृष्ण जी को तो पहले से पता था ना कि वो लंबा सुर है।
अभी लंबा सुर नहीं, प्रलंबा सुर, प्रलंबा सुर, प्रलंब, प्रलंब असुर,
जो असुर था उसका हाँ, पहले से पता था।
हाँ पहले से पता था। हाँ
उसके साथ खेल रहे थे वो।
हाँ तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, है ना? जब पता चल गया, पहले से पता है कि भैया ये असुर है, तो मतलब इतना उसको टाइम देने की क्या जरूरत है? नहीं, उसको पहले ही मार मुर के खत्म कर देते उसको। यही बात है ना आपकी,
जैसे लीला रचित रची भी।
हाँ
उसके साथ खेल भी है।
हाँ
जब वो बलराम जी को पिट्ठू बना के ले भी जा रहा है।
हाँ
तो उनको पता तो है ही कि ये असुर है। अब ज्यादा आगे ले जाएगा तो बलराम जी को भी पता है कि कुछ करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आ जाएंगे पीछे से सारे।
हाँ
तो उन्होंने तो उसको फिर इतनी आगे भी जाने क्यों दिया?
हाँ तो क्यों जाने दिया, पहले क्यों नहीं मारा, ये तो क्वेश्चन है।
हाँ मतलब जैसे वो आगे
है ना, तो ये क्वेश्चन के अंदर, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आंसर में ही ये इतनी महत्वपूर्ण है ये लीला। वो इस क्वेश्चन का आंसर ही वो कारण है कि ये लीला इतनी महत्वपूर्ण है ना? तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उसको इतना टाइम दिया, उसको मतलब कि उसको आगे तक ले जाने दिया और इतनी देर तक खेलता रहा? नहीं, सो इसका कारण ये है कि पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी। तो जो ये प्रलंबा सुर था, देखने में क्या लग रहा था?
वो तो
देखने में तो ग्वाल लग रहा था, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था उसके
अंदर कुछ और,
है ना? इसी तरह से जो हम लोग हैं, जो कोई भी डिवोटी है, अगर बाहर से वो डिवोटी है, अंदर कुछ और चल रहा है, तो भगवान उसको एकदम से ऑब्जेक्ट नहीं करते, भगवान उसके साथ चलते हैं। भगवान है ना, भगवान उसके साथ चलते हैं, भगवान देखते हैं भाई क्या कर रहा है ना? तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान आखिर ऐसा, भगवान उसको मतलब देखे जा रहे हैं, एक साल, दो साल, बीस साल, एक डिवोटी, एक व्यक्ति है बाहर से डिवोटी बना हुआ है, अंदर से कुछ और ही चले जा रहा है, कुछ और ही चले जा रहा है, तो भगवान उसको देखे जा रहे हैं, उसको मार नहीं रहे कुछ, मतलब ऊपरी तौर से ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ एक्शन नहीं ले रहे, है ना? यही बात जो है वो रावण के केस में भी हुई थी, है ना? तो भगवान पहले ढूंढते रहे सीतारण के, बाद में भगवान ढूंढते रहे कहाँ पर है, क्या भगवान को नहीं पता कहाँ पर है रावण, कहाँ पर है ना? तो ढूंढते रहे रावण, सीता वगैरह सब किधर है, ढूंढते रहे पहले, चलो ढूंढ लिया, फिर लंका, फिर वो समुद्र कैसे पार करेंगे, चलो फिर समुद्र भी पार कर लिया, है ना? विभीषण भी आके उनसे मिल गया, फिर भी भगवान ने मैसेज भेजा रावण को,
हनुमान जी को भेजा था,
फिर भी मैसेज भेजा
हनुमान जी नहीं गए थे, हनुमान जी तो पहले चले गए थे, उसके बाद में किसी और को भेजा था,
अंदर गए थे।
हाँ जब विभीषण उनकी साइड हो गया था ना, उनकी साइड, तो उन्होंने किसी और को भेजा था,
अंगद वाली का पुत्र जो था, अंगद हो गया था, वाली का पुत्र अंगद था, सुग्रीव तो ऐसे ही गए थे, लेकिन दूत बन करके अंगद गए थे वहाँ पे, दूत बन के।
चलो ठीक है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, है ना? ठीक है, आप लोग भाव में बैठ गए एकदम से। सो भगवान ने मैसेज भेजा उनको, उसको रावण को, कि देखो अभी भी टाइम है, वापस कर दो, है ना? तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, यार मतलब इतना बात हो गई, एक 11 महीने बीत चुके थे वहाँ पर सीता देवी को, रावण के कैद के अंदर, है ना? 11 महीने बीत चुके थे, पता है आपको, है ना? 11 महीने से भगवान राम ढूंढ रहे हैं और पहुंच गए जब वहां पर, फिर भी मैसेज भेज रहे हैं कि भैया अभी मौका है, आप विद रिस्पेक्ट आप रिटर्न कर दो, मैं छोड़ दूंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ गया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, उस समय उचित नहीं था ऐसा करना, मतलब नुकसान ही नुकसान किए जा रहा है रावण, है ना। फिर भी भगवान ने उसको मौके पे मौका दे रहे हैं, मौके पे मौका दे रहे हैं, नहीं ठीक है ना। सो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान जो है, भगवान ने इसलिए भेजा मैसेज कि भैया अभी भी मौका है सरेंडर कर दो, क्योंकि भगवान आखिरी टाइम तक वेट करते हैं, भगवान मौका देते हैं कि अभी भी अगर इसका हार्ट चेंज हो जाएगा तो अभी भी मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। इतने दयालु हैं भगवान कि भगवान का कितना ही नुकसान कर लो, कुछ कर लो, गालियां दे लो, भगवान के मंदिर तोड़ दो, कुछ भी कर दो, भक्तों को उल्टा सीधा बोलते रहो, मंदिर में फूट डाल दो, मंदिर तोड़ने का मतलब मंदिर में फूट डाल दो, नहीं
मंदिर जब भी टूटा।
सो तब भी भगवान वेट करते हैं, तब भी भगवान मौका देते हैं कि अगर अभी भी इसका हार्ट चेंज हो जाएगा, अभी भी इसको एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अगर कोई एक बार भी मेरी शरण में आ गया, उसने बोल दिया कि हे राम, हे कृष्णा, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, भगवान उसको फुल प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान ये नहीं देखते पीछे क्या किया, ये नहीं देखते भगवान, भगवान इसीलिए भगवान भक्त वत्सल हैं, है ना। भगवान लास्ट मिनट तक वेट करेंगे और इसीलिए भगवान हमारे भी वेट कर रहे हैं, हम भी बाहर से अपने आप को डिवोटी दिखा रहे हैं, अंदर हमारे भी बहुत सारे अनर्थ छुपे हुए हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा कनक कामनी और पता नहीं क्या अगड़म बगड़म हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन भगवान अभी भी हमें भक्ति से हटा नहीं रहे, भक्तों के बीच में रखा हुआ है हमें अभी भी, है ना। अभी भी भगवान हमें लगातार मौका देते जा रहे हैं, लेकिन प्रलम्बासुर और रावण के प्रकरण से हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान मौका देते रहते हैं, करोड़ों मौके देंगे, लेकिन एक लाइन फिर भी खींच देंगे भगवान। अगर रावण नहीं सुधरा, रावण का वध कर दिया भगवान ने, प्रलम्बासुर को होश नहीं आया, प्रलम्बासुर का वध कर दिया, है ना। अगर हम भी अपने हृदय में डुप्लीशियस रहेंगे, दोगलापन हम अंदर रखेंगे, बाहर से कुछ अंदर से कुछ निष्ठा है नहीं मन में, और ऊपर से कुछ उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करते उसको, है ना। कृष्ण को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंदर से भी बिल्कुल भगवान के प्रति 100% निष्ठा है उसकी, है ना, और 24 घंटे भगवान की सेवा करने के बारे में, भगवान को, गुरु को संतुष्ट करने के बारे में सोचता रहता है, है ना। भगवान को ऐसा डिवोटी चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए भगवान को। अगर अंदर कुछ बाहर कुछ और चल रहा है, दोगलापन अगर है, तो भगवान बहुत सारे मौके देंगे, लेकिन अगर हम नहीं सुधरेंगे, अगर हम नहीं सुधरेंगे तो भगवान भक्ति खींच लेंगे और छोड़ देंगे हमें। हम चाहे धोती कुर्ता डाल के रखेंगे, तिलक लगा के रखेंगे, लेकिन भक्ति से नाता खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। इसलिए पहली बात हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए हमें कि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, उसको निकालने का प्रयास कैसे करेंगे, है ना। अगर हमें लग रहा है सब ओके है, नहीं तभी तो, अगर सब ओके है तो फिर कुछ करने की जरूरत क्या है, है ना। जैसे हमारे प्रभु जी हैं, अब इनको लग रहा है कि इनको थोड़ी सी पैर में प्रॉब्लम है, तो ही तो इलाज कराने के लिए जाने की सोच रहे हैं। अगर इनको लगेगा मेरा पैर बिल्कुल ठीक है तो क्यों जाएंगे, नहीं। तो हमें पहले ये अपना, हमें चिंतन करना पड़ेगा, ये पहले हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ भरे हुए हैं, प्रॉब्लम है, फिर हमें निष्ठापूर्वक गुरु के मार्गदर्शन में, चाहे वो दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, उनके मार्गदर्शन में हमें अपने उन अनर्थों को हटाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। अगर हम सोचें कि सिर्फ हम माला जप रहे हैं बस हो गया काम खत्म, नहीं होगा काम खत्म। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बहु जोनी जदि करे श्रवण कीर्तन तो भी तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। करोड़ों जन्म कर लिया हरि नाम, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा जब तक हम अपने हृदय से अनर्थों को नहीं हटाएंगे, दोगलापन नहीं खत्म करेंगे, बलराम जी के प्रतिनिधि गुरु के जब तक हम शरण स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमने गुरु की शरण स्वीकार नहीं की। गुरु की शरण स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है दीक्षा लो और मौज करो, गुरु की शरण स्वीकार करने का मतलब है पूरी तरह उनके आदेशों का पालन करो। दीक्षा लेना गुरु की शरण लेने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है, है ना। तो दो तरह की बातें हो सकती हैं, कोई व्यक्ति बोले कि मैं तो फलाने सन्यासी की सारी बातें मानता हूँ, दीक्षा नहीं ले रहा, और कोई एक व्यक्ति है वो बोलता है कि मैंने दीक्षा ले ली, फटाक से जाके दौड़ के हाथ पैर जोड़ के दीक्षा ले ली, ले बात ही नहीं मान रहा, गुरु कहीं और चेला कहीं। तो ये जो दोनों जो व्यक्ति हैं इन दोनों को प्रॉब्लम आएगी भक्ति में, ये लोग भक्ति में लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएंगे, है ना। चाहे हो सकता है धोती कुर्ता डाल के घूमते रहे लेकिन भक्ति से कनेक्शन कृष्णा खत्म कर देंगे, जैसे प्रलंबासुर का सांसों से कनेक्शन खत्म कर दिया, एक मुक्का मारा खेल खत्म, है ना। उसी तरह से कृष्णा जो है वो भक्ति से कनेक्शन खत्म कर देंगे अगर हम सही मायनों में बहुत ही विनीत भाव से हम गुरु की शरण नहीं ले रहे, है ना। अगर अभी हम भक्ति कर पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है हमें विनम्रता का भी अगर कसौटी विनम्रता की दृष्टि से भी देखें तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे में बहुत कमी है लेकिन कृष्ण सहन कर रहे हैं, है ना। हमारा मकसद कृष्ण की सेवा करना है लेकिन अभी हमारा बर्ताव ऐसा है कि कृष्ण को हमें सहन करना पड़ रहा है ना। तो हमें उस स्थिति से बाहर निकलना चाहिए और हमें उस धरातल पे आना चाहिए जहाँ पर कृष्ण हमें सहन नहीं कर रहे, कृष्ण को हमसे सुख की प्राप्ति हो रही है, है ना। तो ये प्रलंबासुर के जो ये दृष्टांत है, जो प्रलंबासुर का वध है, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम गुरु की शरण लेना बहुत ज़रूरी है और दोगलापन को बाहर कुछ अंदर कुछ उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। बचपन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दोगलेपन की, हमारे लिए दोगलापन स्वाभाविक है, है ना। निश्चलता बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हमें सामने से भरसक प्रयास करके इस दोगलेपन को ख़त्म करना होगा और गुरु के आदेश के अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद के मिशन को हमें सर्व करना पड़ेगा, तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और पांचों में से किसी एक रस में हम स्थिर हो पाएंगे। नहीं तो बंदर की तरह, जैसे बंदर एक टहनी से दूसरी टहनी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे गुलाटियाँ मारता रहता है, हम भी इधर उधर गुलाटियाँ मारते रहेंगे, कभी एक संत के पास पहुँच जाएंगे कभी दूसरे संत के पास पहुँच जाएंगे, कभी ये कर लो कभी वो कर लो, कभी भी हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, है ना। जो भी व्यक्ति प्रभुपाद की शरण ली और प्रभुपाद की शरण लेने के बाद इधर उधर दौड़ रहा है, बंदर की तरह है, इधर उधर गुलाटी मार रहा है, स्थिरता उसके अंदर नहीं है, है ना। अगर हम स्थिरता से अगर हम पालन करेंगे अगर हम, तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, भगवान कृष्ण की किसी एक रस में सेवा करने का, वो लक्ष्य हम बलराम जी की कृपा से, बलराम जी की मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में हम वो प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हरे कृष्णा।